हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 15 से प्रारंभ करके 20 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थामा वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्केनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पोमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की तीसरा स्कंद अध्याय 17 जिसका शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। हमने पढ़ा कि जैसे ही दिति ने 100 सालों तक उस उन गर्भ में स्थित जुड़वा बच्चों को जो कि असुर उत्पन्न होने वाले थे उनको अपने गर्भ में स्थित रखा और 100 वर्षों के गर्भ के उपरांत उन दो पुत्रों को जन्म दिया और दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के सारे लोकों में अनेक अनेक प्राकृतिक उपद्रव होने लगे जो अत्यंत भयावह थे एवं बहुत ही दुखदायक थे। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि बह रही है। उल्काओं पच्चल तारों और वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साएं साएं करती हुई विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सहाय स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय उदंड उनकी अनेक सेनाएं और दूर से मेघ उनकी ध्वजाएं लग रहे थे। वे विदुर झुंड के झुंड हे विदुर झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंक रहे थे। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर चीख चीख कर उड़ रहे थे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। भयभीत होने के कारण गौवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पीप बरसने लगा। मंदिरों में देवों की विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह, बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। उसके उपरांत आगे मैत्रेय मुनि इसी अशुभ दृष्टांत को बताते हुए कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि ये सब अपशकुन देखकर सब लोग भयभीत थे, क्योंकि इतना संसार में भय उत्पन्न हो गया था इनके कारण। तो इसके कारण सब लोग ये सोच रहे थे कि कहीं प्रलय तो नहीं आने वाला है, इतने अपशकुन को देखकर, इतने दुखदायक वस्तुओं को देखकर सबको बहुत ही भय लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कहीं अपशकुन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्रलय होने वाले हैं। और ब्रह्मा जी के जो प्रमुख चार चतुर्ष कुमार हैं, जिन्होंने जय और विजय को श्राप दिया था, उनको तो पता था ये क्यों हो रहा है, इसलिए वो उनके अतिरिक्त बाकी सब भयभीत थे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रान्ऋते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रान्ऋते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। शब्दार्थ, दृष्ट्वा अन्यान, दृष्ट्वा मना देखकर, अन्यान मना अन्य लोग, च महा उत्पातान, ये जो बहुत बड़े बड़े उत्पात या अपशकुन थे उनको देखकर, अतत् तत्वविद, रहस्य को ना जान सके, वो समझ रहे थे क्या हो रहा है, प्रजा यानी लोग, ब्रह्मपुत्रान ऋते भीता, ब्रह्मपुत्रान यानी ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे चतुर्ष कुमार, ऋते उनके सिवाय भीता यानी भयभीत थे, सब कोई डरे हुए थे। मेनिरे विश्व संप्लवम, मेनिरे यानी वो ऐसा सोच रहे थे, विश्व संप्लवम अर्थात विश्व का प्रलय होने वाला है। अनुवाद, इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों पुत्र, चारों ऋषि पुत्र जिन्हें जय तथा विजय के, पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवद गीता के सप्तम अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीव आत्मा इनका अतिक्रम नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है प्रकृति के नियम। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीव आत्मा ही बच सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, जो मेरी शरण में आ जाता है वही माया को पार कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेका अनेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं। मतलब संसार में जब भी अपवित्रता दिखती है, जब भी अपशकुन दिखते हैं, तो समझिए कि ज़रूर आसुरी शक्तियों का वास है, अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पुरा काल में दिति के उत्पन्न हुए केवल दो असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक हैं कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भधान संस्कार प्रमुख था। तो जब अच्छी संतानें उत्पन्न होती हैं, जब पवित्रता बढ़ती है, ज़्यादा लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आसुरी शक्तियों की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए, कि वो ना बढ़े बल्कि अच्छी संतान बढ़े, उसके लिए गर्भधान संस्कार प्रमुख किया जाता था। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति चाहते हैं किंतु गर्भधान संस्कार का लाभ ना उठा सकने के कारण उन अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं, जिस प्रकार दिति के गर्भ में असुर उत्पन्न हुए थे। वो ऐसा नहीं है कि किसी अवैध संग से ही वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। दिति के पति थे कश्यप मुनि, लेकिन यदि गर्भधान संस्कार रूल्स के साथ नहीं किया जाता, संध्या के समय हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो उसके कारण असुर उत्पन्न हो गए। उसी तरह से आज भी कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता, समय को फॉलो नहीं करता, और ना ही विधि विधानों को देखा जाता है, ना ही भगवान का नाम लेकर कोई तपस्या की जाती है। गर्भधान संस्कार तो नाम भी नहीं पता है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए जो 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 जन्म लेते हैं ना, वो ज़्यादातर असुरी स्वभाव के होते हैं। दिति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया था, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। कितना छोटी सी बात लगती है अगर देखा जाए तो, आज के समय के अनुसार। आज तो इस बात को कभी देखा ही नहीं जाता, समय को संभोग करने के लिए कोई भी समय उपयुक्त माना जाता है। लेकिन इस समय जो कि अशुभ था, जो कि भगवान की भक्ति का समय था, जिस समय में और कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उस समय संभोग करने के कारण इतने महाभयंकर असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु तो संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करें तो अच्छी संतान उत्पन्न होंगी, असुर नहीं होंगे, और विश्व में स्वतः शांति स्थापित होने लगेगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए, उल्टे हमें प्राकृतिक नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तावादि दैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृद्धातेष्मसारेण कायेन द्रिपती इव। तावादि दैत्यो, ताव यानी वे दोनों, आदि दैत्यो यानी सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले, आदि माना स्टार्ट के जो ये दैत्य थे, सहसा यानी शीघ्र ही तेजी से, व्यज्यमाना यानी प्रकट होकर, आत्म अपने पौरुषों यानी शौर्य, जैसे ही प्रकट हुए शीघ्र ही उनका शौर्य, उनका बल और उनके लक्षण प्रकट होने लगे। विवृद्धाते यानी वो बड़े होते गए, माना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अश्मसारेण अस्पताल तुल्य, और कायेन यानी शरीर से, अद्रिपति दो विशाल पर्वत इव यानी सदृश। अनुवाद, पुरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस पाताल के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं तथा दूसरे देवता। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी देवताओं और असुरों के डेफिनेशन बता रहे हैं कि संसार में दो टाइप के लोग होते हैं, एक असुर होते हैं और एक देवतुल्य होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं कि किस तरह से मानव समाज जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करे, भगवान की भक्ति की ओर बढ़े, किस तरह से हम कुछ ऐसे कार्य करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में पता चले, गीता सम्मेलन हो या भागवत कथा हो या भागवत चर्चा हो या मंदिरों का निर्माण हो, मंदिरों में भगवान की भक्ति और भगवान के साथ प्रेम बढ़ाने के जो उत्सव हैं वो बढ़ाए। तो ये सब देवता तुल्य लोग होते हैं। और असुर क्या करते हैं, अब हमें सोचना है कि हम ऐसे कार्य कौन से करते हैं। किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विकास करते हैं। किस तरह से मुझे मेरा शरीर बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, शरीर को लग्जरियस वस्तुएं मिलनी चाहिए, भौतिक उन्नति, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरता प्राप्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करता है। दिति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों को लोहे के समान शक्तिशाली बनाने लगे और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते लग रहे थे। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। मतलब सिर्फ अपने शरीर को ही वो शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य करते थे और उनको लगता था कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहाँ साधुओं के शाप से, शाप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध लेने लगे कि श्री भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। मतलब उनको ये याद नहीं आया कि हमने क्यों जन्म लिया है, बस उनको लगा कि हमको बहुत ज़्यादा उन्नति करनी है, शारीरिक उन्नति करनी है, भौतिक उन्नति करनी है, और वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे, बहुत ज़्यादा क्रोध होता था उनके मन में और इतने क्रुद्ध रहने लगे कि उनको अपना प्रयोजन याद ही नहीं रहा। आगे मैत्रेय मुनि उन दोनों के विषय में बता रहे हैं कि वो कैसे लगते थे जब वो बढ़ गए। तो वो दिखने में कैसा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि दो विशाल बहुत बड़े जो पहाड़ हैं उनके जो मुकुट होते थे वो आसमान को छूते थे और उनके चलने से आकाश जो है वो थर थर कांपने लगा, दिशाएं जो होती थी वो अवरुद्ध होने लगती थी और पृथ्वी हिलने लगती थी। वे कहते हैं देवी स्पृशौ हेम कीरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठौ स्फुर दंग दाबुजौ गाम कंपयन्तौ चरणे पदे पदे कट्यासु कांच्यार्क मीतीत्य तस्थतु। दिवी स्पृशौ, दिवी स्पृशौ मतलब आकाश को छूने वाले, हेम किरीट कोटि भी, हेम मना स्वर्णिम, किरीट यानी उनके मुकुटों का, कोटि भी यानी शिखर, उनका जो मुकुट का जो शिखर था ना वो इतना ऊपर था ऐसा लगता था वो दिव्य स्पर्श यानी आसमान को छू रहा हो। निरुद्ध काष्ठो, निरुद्ध यानी अवरुद्ध करना, काष्ठो यानी दिशाएं, और स्फुरदंग दाबुजौ, स्फुरद अर्थात चमकीले, अंगदा यानी बाजू वो बंद यानी भुजौ उनकी बाहों पर, उनकी बाहों पर जो बाजू बंद लगे हुए थे वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। गाम कंपयन्तो चरणे पदे पदे, पदे पदे यानी जैसे ही वो पृथ्वी पर कदम रखते थे ना तो कदम रखते ही पृथ्वी जो है वो कांपने लगती थी। कट्यासु कांच्यार कमीति त्यतस्थतस्थुता, कट्या यानी अपनी कमर से, सुकांच्या आभूषण यानी गर्दनी से, उनके कमर पर जो आभूषण पहने हुए थे, अर्क यानी सूर्य, अतिथि यानी पार करके, तस्थतु यानी वे खड़े होते, जब वो खड़े होते थे ना उनकी कमर पे जो आभूषण लगे हुए थे वो सूर्य को भी ढक देते थे। अनुवाद देखिए, उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए थे कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थीं और जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहों में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर पर परम सुंदर करधनियां बंधी रहती थीं। जब वे खड़े होते थे तो ऐसे लगता था मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार गठित करते हैं कि जब वे सड़क पर चलें तो धरती कांपे और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं ना दिखें। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वह देश भौतिक दृष्टि विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सब हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को भयभीत करें या फिर अपने शरीर को इतना शक्तिशाली करें कि दूसरे लोग भयभीत हो जाएं। हमारा वास्तविक मनुष्य जीवन लेने का जो उद्देश्य है वो इससे कई गुना ऊपर है। हमें हमेशा विनम्र रहकर भगवान की भक्ति करनी है। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही श्रोना, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन इससे मुश्किल और कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ये राक्षस लोग जो हैं वो सदैव अपने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कश्यप ने अपने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। क्या नाम रखा? वे कहते हैं प्रजापतिर्नामयतयो रकाशी यह प्राक स्वदेहा द्यमयो रजायत तम वै हिरण्य कशिपुं विदु प्रजा यम तम हिरण्याक्षमासूत सागरत। प्रजापतिर नाम, प्रजापति यानी कश्यप मुनि ने, नाम यानी नाम, तयोर काशिद, तयोर यानी दोनों का, अकाशित का मतलब है रखा। क्या यह प्राक स्वदेहा, यह मन जो, प्राक यानी प्रथम, पहला जो स्वदेहात अपने शरीर से, यमयो यानी जुड़वा में से, अजायता उत्पन्न हुआ, जो पहला पैदा हुआ ना उसका नाम तम वय हिरण्यकशिप, तम वय उसको, वय माना निस्संदेह, हिरण्यकशिपु उसका नाम रखा जो कि पहले पैदा हुआ। और विदु प्रजा, प्रजा का मतलब होता है जो लोग, सब लोग उसी नाम से उसको जानते, जो पहले पैदा हुआ। और उसके बाद बता रहे हैं यम तम हिरण्याक्षमासूत सागरत। यम तम हिरण्याक्ष, यम मना जिसको, तम मना उसको, हिरण्याक्ष मना हिरण्याक्ष, असूत जन्म दिया, सा वह दिति अग्रतः पहले। अब देखो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब गर्भधान संस्कार होता है तो जो जुड़वा बच्चा होता है उसमें से एक पहले गर्भ में स्थापित होता है, फिर वो ऊपर होता है और उसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है वो स्थापित होता है। तो अगर देखा जाए तो जो पहले स्थापित हुआ तो वो बड़ा होगा क्योंकि पहले स्थापित हुआ ना। लेकिन जन्म पहले किसका होता है? जो बाद में, जिसका जन्म, जो बाद में स्थापित हुआ उसका जन्म पहले होता है क्योंकि वो नीचे होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, अनुवाद देखिए, जीव आत्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं पिंड सिद्धि नामक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ में गर्भावस्था का बहुत ही सुंदर
वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर्य के दो बिंदु क्रमशः स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तो दो भ्रूणों का विकास होता है, और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का पहले गर्भधारण होता है वह बाद में जन्म लेता है और बाद वाला पहले जन्म लेता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले प्रकट हुए होता है, जिसका तात्पर्य है कि वह बाद में गर्भ में आया था, जबकि हिरण्यकशिपु पहले गर्भ में आया था इसीलिए वह बाद में प्रकट हुआ। श्लोक नंबर 19 में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, चक्रे हिरण्यकशिपु दोर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वशे सपालान लोकान स्त्रीन अकुतो मृत्युरुद्धता। चक्रे अर्थात बनाया, हिरण्यकशिपु यानी हिरण्यकशिपु दोर्भ्याम यानी अपने दोनों हाथों से, ब्रह्मवरे यानी ब्रह्मा के वरदान से, च तथा वशे यानी नियंत्रण में, सपालोकान सपालान यानी उनके पालने वालों सहित, लोकान यानी लोकान त्रीन यानी तीन, अकुतः मृत्यु किसी से भी मृत्यु का भय ना होना, उद्धत यानी गर्वित या उद्धत। अनुवाद, ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय ना था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दम्भी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगले अध्याय में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी और तब उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्ष हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार न सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था, इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वह जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि इन चार भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दें कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जितनी जिसकी आयु होगी उतना ही जिएगा, चाहे वो हिरण्यकशिपु जितना बलशाली क्यों न हो और ब्रह्मा जी से वरदान ही क्यों न, लेकिन निश्चित अवधि से ज़्यादा वो नहीं जी सकता था। भले ही कोई हिरण्यकशिपु के समान बलशाली तथा अभिमानी और तीनों लोकों को अपने वश में करने वाला क्यों न हो गए, किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं दी जाएगी। ना जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी अब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए हैं। यही इस संसार का इतिहास है। हिरण्याक्षो नुजस्तस्य प्रियः प्रीति कृदन्वहं गदापाणि दिवं यातो युयुत्सुर मृगयानृणम्। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य, हिरण्याक्षो यानी हिरण्याक्ष, अनुजस्तस्य अनुज माने छोटा भाई, हिरण्याक्ष बड़ा था और उसके छोटे भाई कौन थे, वो थे जो बाद में पैदा हुए थे हिरण्यकशिपु। अनुजस्तस्य उसका प्रिय यानी प्रिय प्रीति कृता प्रसन्न करने के लिए उद्यत। तो बड़ा भाई हमेशा ये सोचता था कि मैं कैसे हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करूं। अनुवहम प्रतिदिन गदा पाणी यानी गदा हाथ में लेकर गदा देवम यातः, देवम यानी उच्च लोक जो बड़े ऊपर ऊपर के लोक हैं यातः वो घूमता रहता था। युयुत्सुर मृगया, युयुत्सु माना लड़ने की इच्छा वाली, मृगयन यानी खोजते हुए, रणम यानी युद्ध। तो वो इतना उतावला होता था कि मैं अपने भाई को इतना प्रसन्न करूँगा, मैं सबके साथ इतना जोर से युद्ध करूँगा, सबको हराऊँगा। और इस तरह से वो अपनी गदा लेकर सारे लोगों में घूमता रहता था। अनुवाद, छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए। अच्छा, हिरण्याक्ष जो है वो छोटा है और हिरण्यकश्यप जो बड़ा है, तो उसको प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के लिए उद्देश्य से उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह असुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग करना सिखाया जाए। जब कि दैवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाने के लिए प्रेरित करती है। अब ये दो चीज़ें यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। असुरी प्रवृत्ति क्या है कि मैं कैसे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करें, और दैवी प्रकृति क्या है, दैवी प्रवृत्ति ये है कि हम कैसे भगवान की सेवा करें और भगवान को प्रसन्न करें। हिरण्यकश्यप स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके स्वयं तो बहुत बड़ा बल और वरदान प्राप्त कर लिया था, छोटे भाई को भी बहुत बलवान बना दिया था, जिससे वह हर एक से लड़ने और प्रकृति पर जहाँ तक संभव हो स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके, और यदि संभव हो तो वह सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। ये सब आसुरी जीवों की प्रवृत्ति है के प्रदर्शन है। आसुर लोग चाहते हैं बस दूसरों को मुझे दबाना है और सब पे शासन करना है, सबको मुझे भयभीत करना है, सबको क्रुद्ध होकर उनको दुखी करना है। तो यही करता रहता था हिरण्यक्ष भी। आगे कहते हैं, तम वीक्ष दुःसहजवम रणत कांचन नूपुरम वैजयंतया वैजयंत्या त्रजाजुष्टम असन्यस्तम तमहागदम। तम वीक्ष्य, तम मन उसको, वीक्ष मन देखकर, दुस्सह जवम, दुस्सह अर्थात वश में करना कठिन, जवम यानी वेग, इतना वेग था उसका कि कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। रणत कांचन नूपुरम, रणत मना बजती थी, जब वो चलता था तो क्या बजती थी, कांचन मना स्वर्ण की, नूपुर यानी नूपुर जो उसने पाँव में नूपुर पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, उसके चलने से बजते थे। और वैजंतिया, वैजंती माला जैसे भगवान की होती है ना, स्त्रजा वैजंती माला से जुष्टम आभूषित, अंसा यानी कंधे पर, न्यस्त यानी टिका, महागदम बड़ी गदा जो थी उसके कंधे पर हमेशा रखी हुई होती थी, और चलते हुए बहुत जोर जोर से उसके पाँव के नूपुर बजते थे, और वैजंती माला पहनी होती थी। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना अत्यंत कठिन था। उसके पैरों में सोने के नूपुर की झनकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी, और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए हुए था। मनोवीर्य वरोत्सिक्तम असिर्ण्यम अकुतो भयम बीतानिली यिरे देवा ताक्षत्रस्ता इवाहया। मनोवीर्य, मनोवीर्य का मतलब होता है मनोबल तथा शारीरिक बल। वर यानी वरदान से, उत्सिक्तम यानी दम्भी या गर्वीला, और असरणियम यानी रोग पाने में असमर्थ, अकुतोभयम किसी से भी डरने वाला नहीं था, भीता डरे हुए, निलिल येरे यानी छिपा लिया, देवा यानी देवताओं ने, तार्क्ष्य गरुड़ से त्रस्ता अर्थात भयभीत होकर, एवं अह्य, अह्य कहते हैं सर्प को, एवं मन उसके समान, जिस तरह गरुड़ से भयभीत होकर सर्प भयभीत होकर छिप जाता है, उसी प्रकार इसके मनोबल से शारीरिक जो बल है उसके द्वारा सारे जितने देवी देवता हैं वो भी जाकर छिप जाते थे। अनुवाद देखिए, उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दम्भी बना दिया था। उसे ना तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और ना उस पर किसी का अंकुश था, अतः देवता उसे देखकर ही भयभीत होते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते थे जिस तरह गरुड़ के भय से भयभीत होकर सर्प छिप जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है कि सामान्य रूप से असुर अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौर्य असाधारण होता है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा ना मारे जा सकने का वर प्राप्त करके प्रायः अमर बन गए थे और पूर्णतया निर्भय हो चले थे। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान के धाम से गिरे हुए जो भगवान के पार्षद हैं उनके अंदर कितनी शक्ति है। अगर वो अभी असुर बने हैं लेकिन असुर बनकर भी इनके अंदर कितनी शक्ति है और उन्होंने कितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है कि सारे देवी देवताओं को भी हरा दिया। अर्थात जब जीव भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो सारे वरदान उसे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भले संसार के सबसे महान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा मनोबल और शारीरिक बल प्राप्त हो भी जाए, फिर भी जीव को इस संसार में सदा के लिए नहीं रहने दिया जाएगा। एक न एक दिन उसे संसार को छोड़ना ही है, फिर क्यों ना हम भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करने के अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ें, जिसका केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान के पवित्र नाम से जुड़ें, जितना संभव हो सके हम भगवान का नाम जप करें ताकि हृदय में जो असुर छुपे हुए हैं उनका वध हो जाए और हमें भगवत भक्ति के भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी सेवा और साधना को मैं अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।